ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 4 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून: खुदा, सुनहरी मतन, जबूर। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। जवाबी मतालिया: जबूर। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा उनका कलाम ताया हुआ, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह कामिल करता है। वही मेरे पांव हरनियों के नीचे बनाता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। दरसीवाज बाइबल में से यसाया। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान खुदावंद में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपने नबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग उन चीज़ों को जो उसमें बोई गई हैं उगाता है, इसी तरह खुदावंद खुदा सदाकत और सताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। सैमुएल: जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावंद के हजूर इस मजमून का गीत गाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी चट्टान है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। खुदावंद आसमान से गरजा और हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदा उनकी डांट से उसके नथनों के दम से समंदर की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमोदार होने लगीं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरदार दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकिजगी के मुताबिक मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। यसाया: देखो, खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर है और वो मेरी निजात हुआ है। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे, और इस वक्त तुम कहोगे कि खुदा उनकी सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदा उनकी मदद सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है, ऐसे उनकी बसने वाली तू चिल्ला और ललकार, क्योंकि तुझ में इसराइल का कदूस बुजुर्ग है। तवारीख। जब फिलिस्तीनियों ने सुना कि दाऊद ममसू होकर सारे इसराइल का बादशाह बना है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ाए, और दाऊद ये सुनकर उनके मुकाबले को निकला, और फिलिस्तीनियों ने आकर रफायम की वादी में धावा मारा। तब दाऊद ने खुदावंद से सवाल किया कि मैं फिलिस्तीनियों पर चढ़ जाऊं, क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने फरमाया कि चढ़ जा, क्योंकि मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो वो बाल पराजीम में आए और दाऊद ने वहीं उनको मारा, और दाऊद ने कहा, खुदा ने मेरे हाथ में मेरे दुश्मनों को ऐसा चीरा जैसे पानी चाक चाक हो जाता है। इस सबब से उन्होंने उस मुकाम का नाम बाल पराजीम रखा, और वो अपने बुतों को वहाँ छोड़ गए, और वो दाऊद के हुक्म से आग में जला दिए गए। और फिलिस्तीनियों ने फिर उस वादी में धावा मारा, और दाऊद ने फिर खुदा से सवाल किया, और खुदा ने उससे कहा कि तू उनका पीछा न कर, बल्कि उनके पास से कतरा कर निकल जा, और तूत के पेड़ों के सामने से उन पर हमला कर, और जब तू तूत के दरख्तों की फूंगियों पर चलने की सी आवाज़ सुने, तब लड़ाई को निकलना, क्योंकि खुदा तेरे आगे आगे फिलिस्तीनियों के लश्कर को मारने के लिए निकला है। और दाऊद ने जैसा खुदा ने उसे फरमाया था किया, और उन्होंने फिलिस्तीनियों की फ़ौज को जबून से जजर तक कत्ल किया, और दाऊद की शोहरत सब मुल्कों में फैल गई, और खुदावंद ने सब कौमों पर उसका खौफ बिठा दिया। मुकाशफा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के साथ बांसु पूंछ देगा, और उसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा, ना आह नाला ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा, जो गालब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। अब मैं मेरी बेगरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हम आहंग और अबदी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। सवाल, खुदा क्या है? जवाब, खुदा गैर जिस्मानी, इलाही, आला, लामहदूद अकल, रूह, जान, असूल, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत है। सवाल, क्या ये इस्तलाहात मुतरादिफ अल्फाज हैं? जवाब, जी हाँ ये हैं। ये एक मुतलिक खुदा का हवाला देते हैं। इसका मकसद इलाही की फितरत, जौहर और कामलियत को जाहिर करना भी है। खुदा की खासियतें इंसाफ, रहम, हिकमत, निक्की वगैरह वगैरह हैं। सवाल, क्या एक से जायद खुदा या असूल है? जवाब, नहीं है। असूल और उसका ख्याल एक है, और वो एक खुदा कादर मुतलिक, हमादानी और हमाजाई हस्ती है, और उसका साया इंसान और कायनात है। इलाही तबीयत जैसे कि रूहानी फहम पर जाहिर हुई है, वाज़ह तौर पर अयां करती है कि सब कुछ अकल ही है, और ये अकल खुदा कादर मुतलिक, कादरुल ज़हूर, अलामुल गयूब यानी सब कुदरत वाला سب جگہ ظاہر اور سب جاننے والا ہے، لہٰذا سب کچھ جو حقیقی ہے وہ عقل کا اظہار ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ خدا یا اچھائی ہر جا موجود اور ساری طاقت رکھتا ہے، تو ہم قادر مطلق کے بلند فہم کو کھو دیتے ہیں۔ ہم ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ شیطان نامی ایک اور طاقت موجود ہے۔ یہ ایمان کہ ایک سے زیادہ عقل موجود ہے، الہی تھیالوجی کے لیے اس قدر تباہ کن ہے جتنی قدیم دیو مالائی کہانیاں اور غیر قوموں کی بت پرستی ہے۔ ایک باپ حتیٰ کہ خدا کے ساتھ انسان کا پورا خاندان بھائی ہوں گے، اور ایک عقل اور خدا یا اچھائی کے ساتھ انسان کا بھائی چارہ محبت اور سچائی پر اور اصول اور روحانی قوت پر مشتمل ہوگا جو الہی سائنس کو قائم کرتے ہیں۔ ایک سے زیادہ عقل کی فرضی موجودگی بت پرستی کی غلطی پر بنیاد رکھتی تھی۔ اس غلطی نے روحانی قوت کی گمشدگی کو، زندگی کی روحانی موجودگی کو ایک عدم احتمال سے مبرہ لامتناہی سچائی کے طور پر اور بطور ازلی اور عالمگیر محبت کی گمشدگی کو فرض کر لیا ہے۔ اس الہی سائنس سے متعلق بے ایمانی سے بات کرنا فضول ہے جو تمام مخالفت کو نیست کرتی ہے، جب آپ سائنس کی حقیقت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر حقیقت خدا الہی اصول کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہے تو شک کرنا بے وقوفی ہوگا۔ اگر سائنس جب سمجھی جائے اور ظاہر کی جائے ساری مخالفت کو نیست کرتی ہے، چونکہ آپ قبول کر لیتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، کیونکہ اس بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اچھائی اور اس کی شیریں مخالفتوں میں تمام قدرت پائی جاتی ہے۔ سیاروں کا انسان پر اس کی نسبت زیادہ اختیار نہیں ہے جتنا ان کے خالق پر ہے، کیونکہ خدا کائنات پر حکمرانی کرتا ہے، مگر انسان خدا کی قدرت کی عکاسی کرتے ہوئے پوری زمین اور اس کے تمام لشکروں پر حاکمیت رکھتا ہے۔ الہی سائنس کا واضح نقطہ یہ ہے کہ خدا روح حاکم کل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی عقل ہے، کہ خدا محبت ہے اور اسی لیے وہ الہی اصول ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ روح، زندگی، سچائی، محبت یکسانیت میں جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا کے روحانی نام ہیں۔ سب مواد، ذہانت، حکمت، ہستی، لافانیت، وجہ اور اثر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں، یعنی لامتناہی الہی اصول، محبت کے ابدی اظہار۔ کوئی حکمت عقل مند نہیں سوائے اس کی، کوئی سچائی سچ نہیں، کوئی محبت پیاری نہیں، کوئی زندگی زندگی نہیں ماں سوائے الہی کے، کوئی اچھائی نہیں ماں سوائے اس کے جو خدا بخشتا ہے۔ دعا ہستی کی سائنس کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہمیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا رجحان رکھتی ہے۔ بھلائی سچائی کا اظہار حاصل کرتی ہے۔ خدا ہمیں نجات دے گا، یہ التجا ہی وہ سب کچھ نہیں جس کی ضرورت ہے۔ الہی عقل سے التجا کرنے کی محض عادت، جیسا کہ کوئی شخص انسان ہوتے ہوئے التجا کرتا ہے، انسانی حدود میں خدا پر بھروسہ رکھنا جاری رکھتا ہے، جو ایک ایسی غلطی ہے جس سے روحانی ترقی رکاوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ خدا محبت ہے، کیا ہم اس سے زیادہ اس سے توقع کر سکتے ہیں؟ خدا ذہانت ہے، کیا ہم اس لامتناہی عقل کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں جو وہ پہلے سے نہ جانتا ہو؟ کیا ہم کاملیت کو تبدیل کرنے کی توقع کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کسی فوارے کے سامنے اور التجا کرنی چاہیے جو ہماری توقع سے زیادہ پانی انڈیل رہا ہو؟ ان کہی خواہش ہمیں تمام وجودیت اور فضل کے منبع کے قریب تر لے جاتی ہے۔ خدا کے آگے خدا بننے کی التجا کرنا بیکار کی تکرار ہے۔ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ جو ناقابل تبدیل اچھا ہے وہ اس کی لیاقت کی یاد دہانی کے بغیر ہی سب اچھا کرے گا۔ اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمام انسانوں کی عقل ایک ہے، ایک خدا اور باپ، ایک زندگی، حق اور محبت ہے۔ جب یہ حقیقت ایک تناسب میں عیاں ہوگی تو انسان کامل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی اور انسان کا حقیقی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। खुरूज 20:3। पहला हुक्म मेरी पसंदीदा अबारत है, ये क्रिश्चियन साइंस को जाहिर करती है। ये खुदा रूह अकल की तसलीस का इदराक देती है। ये जताती है कि इंसान खुदा अब्दी अच्छाई के अलावा किसी दूसरी रूह या अकल को नहीं मानेगा, और ये कि सब इंसान एक अकल को माने। पहले हुक्म का इलाही असूल हस्ती की साइंस पर बुनियाद रखता है, जिसके वसीला इंसान तंदरुस्ती, पाकिजगी और अबदी ज़िंदगी को जाहिर करता है। एक लाम उतना ही खुदा यानी अच्छाई इंसान और अकवाम को मुतहद करता है, इंसानों में भाईचारा कायम करता है, जंगो जदल ख़त्म करता है। इस कलाम को पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर, गैर कौमों और मसीही बुत परस्तों को और जो कुछ भी माशरती, शहरी, मुजरमाना, सियासी और मजहबी शोबा जात में गलत हो रहा है उसे फना करता है। जिन्स को मसावी करता है, इंसान पर की गई लानत को मनसूख करता है और ऐसा कुछ नहीं छोड़ता जो गुनाह का मुर्तकिब हो और दुख उठाए, सजा पाए या फना हो जाए। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का यह फ़र्ज़ है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।